संतप्त मान से शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान है हमारे। ये अपन पंक्ति अभी बार बार पढ़ रहे थे, मैं तो निष्कर्म भाव में बरत रहा हूँ। गीता में आता है निष्काम कर्म, निष्काम कर्म करने की वहां प्रेरणा दी गई है कि बस तुम कामना मत रखो और बस काम करो। बस काम करने का निषेध नहीं है, बल्कि ऐसा स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि फल मेरे पे छोड़ दो, वो उसे मैं देख लूंगा। तुम तो निष्काम कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करो उनके हिसाब से, लेकिन उसकी कोई कामना मत रखो। यदि उसके बदले में तुमने कामना की कि हम ऐसा चाहते हैं इसके बदले में, तो फिर तुमको फल जैसा मिलना चाहिए वैसा फल नहीं मिलेगा। और निष्काम कर्म करोगे, फल की वांछा नहीं रखोगे, तो वो भगवान कहते हैं ना अच्छा ही करेगा। भगवान तुम्हारे ऐसा थोड़े तुम्हारा कोई बेईमानी करके तुम अच्छे काम करो वो तुम्हारे लिए तकलीफ पहुंचा देगा। लेकिन जैन दर्शन में निष्काम कर्म नहीं, निष्कर्म की प्रार्थना की गई है। मैं तो निष्कर्म हूं, मुझे काम न करना ही नहीं है। तो जैन दर्शन में अब वहां तो फल की कामना नहीं करो, काम करो अपने यहां, फिर फल की भी कामना मत करो और काम करने की भी कामना मत करो। कर्म और कर्म फल, इन दोनों से विरक्त होना वो जैन दर्शन है। और काम करने की प्रेरणा देना और उसके फल से विरक्त रहने की प्रेरणा वो गीता का काम है, इसलिए वो उनको निष्काम कर्म कहते हैं उस बात को, है ना। उनका जो तत्व दृष्टि वाला जीव होता है उसका भी कुछ ऐसा ही नाम है, स्थित प्रज्ञ उन्हें बोलते हैं। वो अपन जो सम्य दृष्टि बोलते हैं ना उसको बोलते हैं वो स्थित प्रज्ञ। मन जो भी स्थिति है उसके तुम ज्ञाता दिखता रहो, अपने अभी तो है ही भाई, तुम ज्ञान चेतना रखो, जो भी कर्म न कर्म चाहो न कर्म फल चाहो, लेकिन जो होता है उस सहज भाव से उसके ज्ञाता दृष्टा बनो। वो ज्ञान चेतना है, क्योंकि हम कहेंगे कि हम कर्म नहीं करेंगे तो पहले हमें काम करने का हट था, अब नहीं करने का हट हो गया, तो काम तो हमारे माथे बना ही रहा ना, काम तो हमारे माथे बना ही रहा। और ऐसे ही फिर पहले हम चाहते थे कि नहीं नहीं हमें कब क्या फल मिलेगा, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अब कहते हैं नहीं नहीं हमें फल नहीं चाहिए, बस हम तो काम करेंगे हमें फल नहीं चाहिए, हम तो काम करेंगे लेकिन हमें फल नहीं चाहिए। तो इसमें लग गए, तुमको ये चाहिए, फल नहीं चाहिए ये चाहिए, समझिए ना। जैसे मान लीजिए अपने धर्म के क्षेत्र में ऐसा ही होता है ना, मैंने ज्यादा अपने जीवन में गीता का प्रभाव ज्यादा है, जो अपने को ज्यादा थोड़ा सा महान मानने लगते हैं ना, तो वो कहते हैं कि देखो मैं काम तो करूंगा धर्म के प्रचार का, लेकिन पैसा नहीं लूंगा। तो तू पैसा नहीं लेगा और काम करेगा तो खाएगा क्या? तो उन्होंने कहा खाएगा तो मेरे पास बहुत है बाप दादों का, तो मेरी और कमाई है, तो इसमें फिर क्या हो गया, नहीं लूंगा क्यों बोलता है? है ना व्यवस्था। अब जिसके पास व्यवस्था नहीं है तो वो हवा खा के करेगा क्या? जैन धर्म की दृष्टि में चाहे तुम लेके करो और चाहे बिना लेके करो, वो तो ये कहेंगे तुम धर्म का प्रचार करो। तुम अपने गांव में जाओ, ये कहते हैं ना आपसे, तो वहां पर पाठशाला जरूर चलाओ और प्रवचन जरूर करो। ये नहीं कहते हमारे यहां से कोई आपको कि आप उसके बदले में वहां से पैसा लेना कि नहीं लेना, कि कोई सुविधा लेना कि नहीं लेना, कोई नहीं कहता। क्यों? हमको तो धर्म का प्रचार कराना है। यदि तुमने तुम्हारे पास नहीं है व्यवस्था और एक घंटा दूसरा काम करते दूसरी जगह, तो उसके बदले में तुम जो भी कमाते तो एक तरह से समाज की ड्यूटी है कि आपकी उतनी पूर्ति तो करे ना, और वो समाज के पास क्या कमी है, वो तो समाज तो वैसे ही संपन्न है और दूसरे एक समूह को करना है। यहां तो एक आदमी असुविधा में पड़ जाएगा और वहां बंदा 50 का है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि तुमने लिए कि नहीं लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुमने वो तत्व ज्ञान की जो धारा चली कि नहीं चली, जितने लोगों को वो भाव पका के नहीं पका, आप समझे ना। लेकिन वो जो आदमी जैसे किसी पूर्व पुण्य के उदय से, अच्छा पुण्य के उदय से झगड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि पुण्य के उदय से आता कि पाप के उदय से, लेकिन जो भी तुम्हारे पास यदि सुविधा हो गई है और तुम नहीं ले रहे हो तो तुम जरा उनसे अपने को बड़ा मानने लगते हो। लेकिन ये मान्यता बहुत खोटी है, इस अर्थ में खोटी है कि तुम्हें करना तो है नहीं, बस महीना में एक आध दिन कर दोगे और ये हाँकते रहोगे कि हम करते हैं लेकिन लेते नहीं हैं, और जो वो कुछ लेके व्यवस्थित रूप से करेगा वो बराबर 30 दिन प्रतिदिन व्यवस्थित रूप से करेगा तो सचमुच लोगों को लाभ होगा। मेरा मतलब समझे आप? इसलिए मेरी दृष्टि में तो जो वो लेके कर रहा है वो ज्यादा अच्छा है कि नहीं करने के लेकर करने वालों के अभिमानियों से ज्यादा अच्छा है। यानी इसमें ऐसी बड़ी क्या बात हो गई। मैं तो बाबू भाई से कहता था कि आप मान लो पैसे वाले हो कि समझो भाई, तो आपने कि हमने किराया भी नहीं लेंगे तो क्या हो गया इसमें, इससे तुम बड़े कैसे हो गए। बड़े तो तुम विद्वत्ता से हो गए, जनता को लाभ तो यह है कि तुम बहुत अच्छी तरह समझाते हो, व्यवस्थित रूप से पढ़ाते हो, तो जनता को लाभ है। तुम लेते हो नहीं लेते उसे जनता को क्या फर्क पड़ता है, और तुम अपने इस तरह जनता का समय खराब करो, समझाना आता नहीं, पर क्योंकि तब तुम बड़े महान हो, क्योंकि तुम लेते नहीं हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा चांस मिलना चाहिए। जो बेचारे लेते हैं उनको जब कोई नहीं हो तो मजदूरी तो उन्हें लगा देना चाहिए। ये क्या है, ऐसा मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता था। यहां ये कह रहे हैं, यहां तो अपन ये कह रहे हैं कि भाई कर्म से मैं तो निष्कर्म भाव वाला हूं। अब इसमें ये बात समझना कि चार गाथाएं शुरू में निष्कर्म की हैं और तीन गाथाएं निष्फल की हैं, माने एक कर्म चेतना के निषेध की हैं चार गाथाएं और तीन गाथाएं कर्म फल चेतना के निषेध की हैं। इसलिए अपन पीछे ही निकाल लो, ध्यान निकालने में दिक्कत नहीं, पीछे भी पाठ कर रहे थे ना, वहीं निकाल लो तो आपको सुविधा रहेगी वो देखने की। गाथाएं कहते हैं 383 से पढ़ रहे थे ना, देखो शुभ अशुभ पढ़ो, शुभ अशुभ कर्म, तो इसमें चार गाथाएं कर्म के निषेध की आएंगी, फिर तीन गाथाएं कर्म के फल के निषेध की आएंगी। पढ़ा तो अभी आपने, लेकिन हमको फिर पढ़वा रहे, फिर तुम्हारा ये ध्यान इस दृष्टि से नहीं गया ना, तो अब एक दफे इस दृष्टि से इस पर देखो, पढ़ो।
शुभ अशुभ कर्म अनेक विध हैं जो किए गत काल में, उनसे निवर्तन जो करे वह आत्मा प्रतिक्रमण है। बधेंगे जिस भाव से शुभ अशुभ कर्म भविष्य में, उससे निवर्तन जो करे वह जीव प्रत्याख्यान है। शुभ अशुभ कर्म अनेक विध हो रहे संप्रति काल में, इस दोष का ज्ञाता रहे वह जीव है आलोचना। जो करे नित प्रतिक्रमण एवं करे नित आलोचना, जो करे प्रत्याख्यान नित चारित हैं वे आत्मा।
अब रुको एक सेकंड, देखो ये जो लिखा है ना, ये क्या करे, प्रत्याख्यान करे, आलोचना करे, प्रतिक्रमण करे, तो किसका? ये कर्म, कर्म का है। कर्म माने गाना वर्णादि कर्म तो आएंगे आगे भी बताएंगे, लेकिन यहां तो ये कह रहे काम करने, कर्म माने करने का, जो मैं करता हूं उसके बारे में है। ऊपर से ये शुभ अशुभ कर्म अनेक विधि जो किए मैंने गत काल में। अब ये शुभ अशुभ कर्म लगाना एक किसकी बात है? शुभ अशुभ कर्म अपना निष्कर्म है ना, माने वहां तो अशुभ का निषेध करते हैं और शुभ की कर्म के करने की प्रेरणा देते हैं। अब तो अपने जैन धर्म वाले भी सब ऐसा ही करने लग गए, लेकिन यहां तो शुभ अशुभ भाव दोनों कर्म जो भी मैंने किए उनका मैं प्रतिक्रमण करता हूं, आलोचना करता हूं, प्रत्याख्यान करता हूं, माने उनकी मैं माफी मांगता हूं, वर्तमान में भी छोड़ना चाहता हूं, भविष्य में नहीं करने का संकल्प करता हूं। शुभ को भी शुभ भी आ गया ना, ध्यान गया ना इसमें। यानी मूल गाथा में ये बात कही है कि शुभ अशुभ कर्म अनेक विध हैं जो किए गत काल में। अब ये शुभ अशुभ अशुभ कर्म, ये चार गाथाएं इन शुभ अशुभ कर्म के बारे में ही हैं। तो जिस गाथा में जगह थी तो उन्होंने लिख दिए, जिसमें जगह नहीं थी तो नहीं लिखे, लेकिन ये बराबर यही प्रकरण चल रहा है अपने दिमाग में, तुम समझ लेना, है ना? एक बार ख्याल में आ गई ना। अब जो गाथाएं चलती हैं इसके बाद में वो कर्म फल की हैं। पढ़ो।
जो कर्म फल को वे देते निज रूप माने, कर्म फल है बांधते वे जीव दुख के बीज वसुविद कर्म को। जो कर्म फल को वे देते माने, कर्म फल में किया है बांधते वे जीव दुख के बीज वसुविद कर्म को। जो कर्म फल को वे देते हो सुखी अथवा दुखी हो, है बांधते वे जीव दुख के बीज वसुविद कर्म को।
अब कर्म फल को देखते तो भाई शुभ अशुभ कर्म फल, वो शुभ अशुभ कर्म तो ऊपर आ ही गया और उसमें फल और जोड़ दिया, तो चार गाथाएं तो कर्म के त्याग की हैं और तीन गाथाएं कर्म फल के त्याग की हैं। इसका मतलब वो कर्म चेतना के त्याग की हैं और ये कर्म फल चेतना के त्याग की हैं। तो ये सात गाथाओं में इन्होंने ये बात बताई है। अब बीच में जो कलश आएंगे उन कलशों में भी ये बात ऐसी स्पष्ट आई है और वो बताएंगे। देखो कलश में भी पढ़ो, अब ये पन्ने पढ़े ना, आपको हमें क्यों पढ़वा रहे? अभी सोचो आप तीन दिन से पढ़ रहे हो, दो दिन से, तो आपका ध्यान इस पर गया था? नहीं गया ना, इसलिए कि आपका ध्यान गया इस पर तो आपको सब समझ में आएगा। बोलो।
भूत भविष्य वर्तमान के सभी कर्म कृत कार्य अरु अनुमोदन आदि में सभी ओर से कर परित्याग हृदय से वचन काय से अवलंबन लेता हूँ परम निष्कर्म भाव का। मोह भाव से भूत काल में कर्म किए जो उन सब का ही प्रतिक्रमण करके अब मैं तो वर्त रहा हूँ। अरे निरंतर स्वयं स्वयं के शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्म में मोह भाव से वर्तमान में कर्म किए जो उन सब का आलोचन करके ही अब मैं तो वर्त रहा हूँ। अरे निरंतर स्वयं स्वयं के शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्म में नष्ट हो गया मोह वा जिसका ऐसा में करके पता ख्यान भावी कर मौका अब तो पढ़ते रहा हूँ अरे निरंतर स्वयं स्वयं के शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्म में तीन काल के सब कर्मों को छोड़ इस तरह परम शुद्ध निश्चयन का अवलंबन लेकर निर्मोही हो वर्त रहा स्वयं स्वयं के शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्म में।
देखो देखो अब यहाँ तक वो कर्म कर्म की बात है मैंने कर्म चेतना की बात है। अब पहले अपन ने गाथाओं में शुभ अशुभ कर्म की बात करी थी और इसमें उसके बदले में सभी कर्म तो सभी माने शुभ अशुभ। अब वो सभी कर्म की बात कही तो जरा थोड़ी अस्पष्ट रह गई क्या अपन सभी तो कुछ भी मान लेंगे अशुभ अशुभ तो बहुत है ना इसलिए सभी लग जाएगा लेकिन जो उन्हीं गाथाओं पर कलश है ना तो भले ही इसमें सभी लिखा है और वहां शुभ अशुभ लिखा तो मैं शुभ अशुभ सभी कर्म। अब ये उन चार गाथाएं थी ना ये उसके बाद के कलश हैं निकाल के वहां देखना उनके बाद आए होंगे ये कलश। अब इसके बाद के जो कलश हैं वो कर्म फल चेतना के त्याग के हैं। पढ़ो
कर्म व्यक्ति के विषफल मेरे बिन भोगे ही खिर जाए बस यही भावना बाता हूँ मैं क्योंकि मैं तो वर्त रहा हूँ स्वयं स्वयं के शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्म में सब कर्मों के फल से सन्यासी होने से आत्म से अतिरिक्त प्रवृत्ति से निर्वृत्त हो चिद लक्षण आत्म को अतिशय भोग रहा हूँ यह प्रवृत्ति ही बनी रहे बस अमित काल तक।
अभी तुम यहाँ रुक गए क्यों कि तुम समझ रहे कि खत्म हो गया क्योंकि छंद बदल गया। अभी ये दो छंद और हैं जो ये कर्म फल चेतना के संदर्भ में ही है ना अभी आप है देखो पढ़ो उसमें अभी कहाँ खत्म कहाँ होंगे।
रे पूर्व भाव कित कर्म दर्द तरु के अज्ञान मय फल नहीं जो भोगते हैं अरे प्राप्त है स्वयं में चिर काल तक वे निष्कर्म सुखमय दशा को भोगते हैं। रे कर्म कर्म फल से संन्यास लेकर सद ज्ञान चेतना को निज में नचाओ प्याला पियो नित प्रसम रस का निरंतर सुख में रहो अभी से चिर काल तक तुम।
अब जो दो छंद है ना इसमें एक छंद तो कर्म फल चेतना के उपसंहार का है और दूसरा छंद कर्म चेतना और कर्म फल चेतना इन दोनों के प्रकरण के उपसंहार का है। ख्याल में ना देखो क्या पूर्व भाव कृत कर्म जहर तरु के माने जहरीले वृक्ष के जहर का वृक्ष है ना उनको अज्ञानमय फल जो नहीं भोगते हैं और आत्मा में तृप्त हैं वे अनंत काल तक सिद्ध दशा में अनंत सुख भोगेंगे। और अभी दोनों में ये कर्म कर्म फल से संन्यास लेकर अभी दोनों आ गए यहाँ पर लौट के तो वे चार गाथाओं का था वो कर्म और कर्म फल से बाकी की तीन गाथाओं का वो और चार गाथाओं के बाद जो कलश आए थे वे और फिर तीन गाथाओं के बाद कलश आए हैं वे उनका उन सब का उपसंहार है। ये प्रकरण कैसे वहां शुरू होता है और कैसे यहां समाप्त होता है ये आपका ध्यान इस पर जाओ इसके लिए मैं बता रहा हूं क्यों अब कल से ये पाठ तुम करोगे ना तो तुम्हें एक अलग आनंद आएगा और याद भी रहेगा उसी रूप में याद रहेगा, है नहीं ना? कि वे कर्म कर्म फल से संन्यास लेकर सद्ज्ञान चेतना को निज में नचाओ। अब ये प्रेरणा की वाक्य है कि अब तुम ज्ञान चेतना को अपना नचाओ। इन दो से तो संन्यास ले लो, कौन कौन से? ये कर्म और कर्म फल से। और प्याला पियो नित प्रसम रस का निरंतर, और सुख में रहो अभी से चिरकाल तक, तुम अनंत काल तक सुख में मगन रहो। एक तरीके से आशीर्वाद का, उपसंहार का, तुम ऐसा होगे फल बताने का, इस तरह का एक कलश है ना? देखो फिर वो आता ना बाद में, वो प्रकरण आते हैं कि मैं जो बदलेगा, तो वो उसके कलश बाद में आएंगे। तो इस तरह से इन कलशों के माध्यम से ये अपने जो चार और तीन सात गाथाएं उनके कलश चल रहे हैं उसके का संदर्भ मैंने आपको बताया। अब अपन कल कहां तक पहुंच गए थे, वहां तक वहां से निकालो। अब कल परसों हम 47वें पेज पर है ना, 225वां कलश। हाँ अब देखो ये, ये, ये अब जब कर्म फल चेतना और कर्म चेतना, तो कर्म चेतना में इनने 49 करके और तीन तरह से निकाले भूत भविष्य वर्तमान के, तो 147 प्रकार से उसकी आलोचना की। आलोचना की माने मैंने पश्चाताप किया, प्रतिगमन किया, प्रत्याख्यान किया, और फिर 148 कर्म की प्रकृतियों का वो कर्म फल चेतना में ये बताएंगे। इस तरह से ये प्रकरण है। देखो भूत भविष्यत वर्तमान के सभी कर्मकृत कारित अर अनुमोदनादि में सभी ओर से सबका कर परित्याग हृदय से वचन काय से, हृदय से माने मन से अवलंबन लेता हूं परम निष्कर्म भाव का। मैं परम निष्कर्म भाव का अवलंबन लेता हूं माने कुछ नहीं करने वाले भाव का, ना कुछ करने और ना कुछ चाहने वाले। अब मैंने आपको जो शुरू किया था ना कि गीता में तो फल मत चाहो और काम करो, ये बात आ जाती है। वहां निष्काम कर्म जिसे भी बोलते हैं ना कि तुम फल की कामना मत करो लेकिन काम करो, और यहां कह रहे हैं कि ना करो ना फल की चाहे आज करो। अब हम कहते ठीक है, अब हम कल से नहीं करेंगे और फल की चाहे नहीं करेंगे, तो तुम तो करने ही में तो चढ़ गए, तुम सहज उदासीन कहां रहे? अभी तक मैं करता हूं, अब मैं कल से नहीं करूंगा क्या? अभी जरा सा किसी से कह दो तो ठीक है मैं कल से प्रवचन में नहीं आऊंगा, नहीं आएगा ये किस पे ठपका लगा रहा है कि नहीं आएगा? नहीं आएगा तो तू वंचित रह जाएगा। तू आएगा अपने लाभ के लिए आता है क्या, कि हमारी एक संख्या बढ़ाने के लिए आता है? आप ऐसा कहोगे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा विद्यालय, तो चला जाएगा। तो तू अपने जैन दर्शन का परिपक्व ज्ञान लेने के लिए आया है, क्यों इकाई के लिए आया है? चला जाएगा तो उनसे वंचित हो जाएगा। ये समझ नहीं ना, वो या तो करना है या नहीं करना है, या फल चाहना है या नहीं चाहना है। तो कहते चाहने और नहीं चाहने के दोनों जो विकल्प हैं इनसे तू पार हो जा, कुछ मत सोच इस मामले में, ना करने के मामले में ना नहीं करने के मामले में। क्या? क्योंकि एक छोड़ता है तो दूसरे काम को लेके बैठ जाता है, समझ गए ना? देखो त्रिकाल के समस्त कर्मों का मन वचन काय कृत कारत अनुमोदना से त्याग करके अब मैं परम नैष्कर्म भाव का अवलंबन लेता हूं। नैष्कर्म यानी कुछ नहीं करना, इसका भाव तो ये तो करना हुआ और फिर नहीं करना हुआ, और परम निष्कर्म कब इन्हें करने और नहीं करने के विकल्प से पाए। ये जैन धर्म का काम है क्या? धर्म है ये कि हम या तो हम उपवास करेंगे तो क्या उपवास हम नहीं करेंगे। आज आप शाम को खाना खाओगे, तुम कहो तो नहीं खाएं, नहीं नहीं आप तो खूब खाओ तो ठीक खा लेंगे। अरे भाई तुम क्यों पूछ रहे? मैंने जो सहज भाव से हो जाएगा वो हो जाएगा, खाना हो जाएगा तो हम खाने को जान लेंगे और खाना नहीं होगा तो हम नहीं खाने को जान लेंगे। मेरा मतलब हम अनंत काल तक का सारा प्रोग्राम नक्की करके रखते हैं, तुम अगली साल शिखर जी जाओगे कि नहीं जाओगे, क्या जवाब दें, क्या करें हम, बोलो कि जाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, तो तुम काय को नक्की करना चाहते हो? आप जाओ तो हम भी अपना प्रोग्राम बना लें। तो मतलब ये है कि तुमसे हमने हां कही तो फिर हमें हां निभाना पड़ेगा, और ना कही तो ना निभाना पड़ेगा। आज से हमें उसके लिए बंधना पड़ेगा ना, जो अपना दिन जैसा ना वो काम तुम्हें शिकर दी जा रहा हूं। क्यों भैया क्यों, कैसे अभी विकल्प आ गया नहीं परिवार के साथ? क्यों कि आपका जो कार्यक्रम मैं टाइप करता हूं ना उसमें लिखा था शिखर जी का कार्यक्रम, समझे ना, तो हमने क्या बंद हमने भी बना लिया। अब आप तो जाने रहे हो, हमने अरे हमारा नहीं लिखा था वो, हम तो ये लिखा था कि मिशन के क्या क्या कार्यक्रम हैं अभी एक साल में, हमारे नहीं क्या माने हेडिंग लिख दिया डॉक्टर भारेल के संभावित कार्यक्रम। अब तुम्हें लिख दिया हेडिंग, हम क्या करें और संभावित लिखा तो हमने कुछ विकल्प नहीं किया। तो अब आप समझिए ना कि प्रश्नों इसका जवाब देना कितना कठिन है। देखो मुनिराज जो होते हैं ना वे कभी ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं उनसे पूछो कल प्रवचन करोगे कि नहीं, तो वे कुछ जवाब नहीं देंगे। अब क्यों कि तुमने तो इसलिए पूछा है कि इन्हीं से पूछ लो पता लग जाएगा। अब कल हमारा नहीं विकल्प हुआ, नहीं गए हम कोई कारण में से नहीं गए, तो तुम कहोगे हम तो साहब वहां पहुंच गए, कहीं आप प्रवचन करने वाले थे इसलिए क्यों है? और आपने मना कर दी तो हम तो नहीं गए, अब आपको लोग मना के ले गए तो आप चले गए, तो हम क्या कहें कि भाई आएंगे मनाएंगे तो जाएंगे, नहीं मनाएंगे तो नहीं, हम क्या जवाब दें बोलो आपको? यानी वो एक मिनट का भी आगे का कार्यक्रम क्यों नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं बताते हैं? शास्त्र में लिखा है कि नहीं बताना चाहिए, इसलिए गुलाम मार गया, क्योंकि वो बताते ही वो उससे बंधता है। वैसे जनवाणी में अपने यहां एक नय है, कौन सा नय है? नैगम नय, जो अकेला ज्ञान नय है, जो अकेला कि वो ये कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम्हारा तो अभी जो संकल्प है कि विकल्प है, बस तुम तो वो बताओ, तुम बिल्कुल बाउंड नहीं हो है? वो कहता है भविष्य में ये काम होगा कि नहीं होगा इसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, है? हम तो सिर्फ हमारा विकल्प अभी ये है क्या कि हम शिखर जी जाने वाले हैं फला तारीख को, हमने वो तुमने पूछा तो हमने वो बताया है क्या, अब इससे हम रंच मात्र भी बाउंड नहीं है, क्योंकि हमने कह दी तो हमें जानी पड़ेगी, जरूरी है क्या क्या परिस्थिति बन जाए क्या है। एक तो स्वाश्रय भी बन जाती है, अपनी भी परेशानी हो सकती है, और एक ये भी है कि साहब उनकी शादी में आप जाओगे कि नहीं जाओगे, साहब अभी तो कारण आया नहीं है, क्या कहें तुम? अरे जब कारण आएगा तो जाओगे तुम्हें? अरे भैया आने तो दो सोचेंगे, अब ये छोटी छोटी बातें लगती हैं आपको, लेकिन ये सब धर्म की बातें हैं, धर्म है ये असली, माने हम बिल्कुल आजाद हैं, हम किसी से रंज मात्र भी कहीं भी बंधना नहीं चाहते, इसके लिए है ये बातें। बात तो यहां तक की है कि आप यदि ऐसा प्रश्न करते हैं सारी दुनिया को तो हम रोक नहीं सकते, तो हमारे किसी से भी एक्शन से और आप डिसीजन कर सकते हैं यहां पे तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो वास्तव में हमारा ऐसी वृत्ति होनी चाहिए और प्रवृत्ति भी कि आप कोई डिसीजन ही नहीं कर पाए कि हमारा भी क्या विकल्प चल रहा है। आप समझ में आए ना परमात्म, यानी हमारा जैसे हम पत्थर के बने हों और आपने देखा कि हमने इतनी बातें करी और इसके चेहरे पे कोई भाव ही नहीं आया, तो हम ऐसी बातें कर करके और उसके भाव को समझना चाहते हैं तो वो कोई भाव आवे ही नहीं इसके चेहरे पे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन बुद्धिपूर्वक करने की बात नहीं है, हमारे डिसीजन ही नहीं है तो कैसे आएगा वो भाव। हम आकुलित हो रहे हैं तुम्हारे प्रश्न से तो वो कुछ ना कुछ आएगा भाव, नहीं हो तो हम झल्ला पड़ेंगे क्यों माथा खाते हो, जाए तो जाए नहीं जाए तो भी क्या मतलब है, अपना काम करो, झल्ला जाएंगे। हम पे कहते हैं कुछ हम पर रिएक्शन ही नहीं हो, जैसे पत्थर की मूर्ति हो, जो अपने कहते हैं ना मुनिराज ध्यान कर रहे हैं जंगल में बैठे बैठे जैसे पत्थर के हिरण खाद खो जाते ऊपर, पत्थर की मूर्ति हो बस ऐसे ऐसे होना चाहिए हमारे लिए। उसका नाम है निष्कर्म भाव। मैं ये निष्कर्म भाव का अर्थ समझा रहा हूं कि हम भूत भविष्य वर्तमान के किसी भी काम से बिल्कुल भी हमारे चित्त में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्या मैंने एक दफे सुनाया था किसी आदमी से पूछा कि आजकल के पत्रकार लोग थोड़ी बड़ी उम्र हो जाए ना तो वे पूछेंगे साहब इंटरव्यू लेना है आपका, ऐसा है वैसा वैसा है, वे कहेंगे साहब आपकी अभी तक इतनी लंबी उम्र पाने का, इतना जिंदा रहने का, अभी तक जिंदा रहने का क्या रहस्य है। ऐसे ऐसे बेबू के प्रश्न पूछते हैं क्या जवाब दें, हम माथी बसल पर काय के सल पर देखिए दे दो ना जो बात है बता दो क्या 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 अभी जिंदा होने का क्या कारण है, मरे नहीं ले जिंदा है मर जाती है मर जाती। अच्छा आप कम बनोगे, आप कम बनना चाहते हो, अरे क्यों इन बेवकूफ की बातों में पढ़ने पढ़ने से क्या प्रयोजन है मेरी समझ में नहीं आता है। जो जो परिणाम जब जब जैसा होगा हो जाएगा, हम उसमें क्या करने वाले हैं समझिए ना, हम अनंत काल तक के परिणामों के अभी मालिक हैं। यदि आप उसके ज्ञाता दृष्टा मेरे सचमुच तुम्हें केवल ज्ञान जैसे ज्ञान है कोई और तुम उसे जान सकते हो तो हम आज जान लेते, नहीं जान सकते तो हमने क्या बिगड़ता है, नहीं जाना नहीं जाना, हमारे ज्ञान जानने में नहीं आ रहा ये जान लिया। कोई बात आपसे पूछा फिर अब आपसे पूछेंगे बहुत प्रश्न पूछेंगे वो बहुत पूछेंगे तो पूछें दो ना बहुत प्रश्न, नहीं नहीं वो फंसाएंगे साहब कैसे कैसे फंसा लेंगे पूछेंगे ना हमसे, जवाब तो हम देंगे ना क्यों, नहीं नहीं साहब ऐसा फंसा लेते हैं कि एक ही जवाब दो तो इधर 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 पूरा इधर जवाब दो तो खाई ऐसा कैसे होगा और ऐसा दिखेगा नहीं देंगे जवाब चुप रहेंगे हमें क्या फर्क पड़ना, हम कोई सर्वज्ञ हैं केवल ज्ञानी हैं हर बात का जवाब देना चाहते हैं कि साहब वो उसमें कौन से गुणस्थान में क्या होता है ऐसा पूछेंगे तो आप क्या जवाब दोगे, पता नहीं होगा तो भैया हमें पता नहीं। अभी इतने से मैं सारे माथे का बोझा उतरता है और उसके लिए तू इतने घबरा रहा है, इतना ही तो कहना है ना कि भाई के हमें नहीं मालूम है हमारे ज्ञान में नहीं आया, क्योंकि ऐसे हम कोई केवल ज्ञानी तो है नहीं और केवल ज्ञानी के कौन से ठेका है, केवल ज्ञानी आपके हर प्रश्न का जवाब दे रहे हुए जरूरी है, नहीं तो एक का भी नहीं देते, दिव्य ध्वनि सहजी भाव से कृति है जो कृति है, ये किसी के प्रश्न का जवाब थोड़ी देते हैं, तो 60,000 प्रकार के प्रश्न होते हैं, वो तो प्रश्न के जवाब ऐसे ऐसे प्रश्न हों तो उनके जवाब सहज ही आ जाते हैं, ऐसी बात है। कोई प्रश्नोत्तर बातचीत नहीं होती, कोई तर्क नहीं होती, कोई व्यवस्था नहीं होती। मौन का ये अर्थ है, यदि किसी भी विधि से हमसे उसमें प्रश्न या उत्तर निकलता है तो मौन भंग हो गया। क्यों? सामने वाले ने कहा कि भाई ये मैं परस दूं, तो क्या कहा मौन है, कहा मौन है, तो क्या करे बेचारा जी, सामने वाले की तो भी परेशानी है, कई की परेशानी है, वो बेचारा लाएगा जो भी परोसना होगा उसे हाथ में मुनी लाद के, तो बस वो आएगा, उन्हें लेना होगा तो ले लेंगे, नहीं ऐसा कर देंगे तो खत्म होगी। कहा इसमें कहा है, इसमें हाना कहने की क्या बात है। मेरा मतलब ये है कि उन्हें बिल्कुल भी माथे पे बोझा नहीं होना, उसका नाम है निष्कर्म भाव से। हम ऐसा करेंगे तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फल मिलेगा। अरे भाई जो भी जगत में होता है काम, जो जिसका जो फल है वो फल होता ही है, उसमें ये पूछने की क्या बात है, जो जो फल है वो मिलेगा, जो फल होता है। कि तुमने खूब फल की कामना करके ये काम किया तो इसका फल तुम्हें पाप बंधना है, पुण्य बंधना नहीं है, वो फल मिलेगा ना। कौन कहता फल नहीं मिलेगा, कि जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, तो मिलेगा ना, पक्की बात है। अरे मेरी तरफ से गारंटी है क्या? गारंटी तो वस्तु स्वरूप की तरफ से है। तुझको इतनी तीव्र आकुलता है ना, तीव्र जिज्ञासा वो है कि मिलेगा क्या नहीं, मिलेगा क्या नहीं। ऐसे लोगों को जैसा फल मिलता है वैसे ही मिलेगा, वो तुझे मिल रहा है ना फल, व्याकुलता को अभी तुम भोग रहा है ना। तो वो कहते देखो अब वो पहले कर्म बता रहा हूं मैं, अपने कर लिया ना कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। अब कर्म चेतना को 147 प्रकार से वो घटा रहे हैं, इतने विकल्प खड़े कर रहे हैं, वो नचा रहे, वो इसको नचाना बोलते हैं वो, कि इससे इस भेद विज्ञान की भावना को तुम नचाओ। तो कैसे नचाओ, कि मन से नचाओ, वचन से नचाओ, काय से नचाओ, खुद नाचाओ, नाचो फिर दूसरे से नचवाओ, और कोई नाच रहा हो तो उसकी अनुमोदना करो, तो तीन तीन हो गए, तो फिर इनको जोड़ो तो तीन तरह का नौ हो जाएंगे। फिर वो संभ्रम आता है ना, तो उनसे इनको जोड़ो, फिर इस तरह से ये अभी 49 भंग बनाएंगे। तो इसमें एक जैसे मन वचन का ये तीन चीजें हैं, तो इन तीन के 7 भंग बनते हैं, अपने सप्तभंगी है ना। मैं उदाहरण देता रहा हूं पहले कि हर बहेरा और आंवला, ये तीन चीजें हैं, इनका जो मिलकर चूर्ण बनता है उसका नाम है त्रिफला। तो ये तीन चीजों के हम कितने चूर्ण बना सकते हैं, कितने चूर्ण बन सकते हैं, अधिक से अधिक कि कम से कम। तो एक तो तीनों को अलग अलग पीस दो, पीस देने का नाम है चूर्ण। अपन चून बोलते हैं ना, चून, चून माने चूर्ण। तो एक अकेला आंवले का बन गया, एक बहेरे का बन गया, एक हरे का बन गया, तीन बन गए। अब दो दो मिलाओ, हर और बहेरा, बहेरा और आंवला, और आंवला और हर, ऐसे तीन तो तीन और बन जाएंगे, तो 6 हो गए। और एक तीनों को मिला दो तो 7 हो गए। तो तीन तरह की वस्तुओं के चूर्ण 7 बन सकते हैं। तो ऐसे अब मन वचन काय को मिलाओ, एक अकेला मन, एक वचन और एक काय, तो एक मन और वचन, दूसरा वचन और काय, और तीसरा मन और काय, तो 6 हो गए। और एक तीनों की मन वचन काय से मैं ऐसा करता हूं तो 7 भंग हो गए। अब मन वचन काय के 7 हो गए, फिर इनमें कृत काय अनुमोदना लगाओ, माने मन से करो, वचन से करो, काय से करो, دو دو کو ملا کے کرو اور تینوں کا ملا کے کرو تو کتنے ہو گئے سات ستے؟ انچاس ہو گئے نا. تو یہ انچاس کرت کے ہو گئے, انچاس کارت کے ہو گئے, انچاس انمودنا کے ہو گئے, ایک سو سینتالیس دو چاس. تو اس طرح سے ایسے بھنگ بن جاتے ہیں جی. اب یہ ایسے بنا بھی سکتے ہیں کہ ایک آدمی نے من سے کیا کہ من, پھر دوسرا بھنگ بنے گا من سے کرایا, تیسرا بھنگ بنے گا من سے انمودنا کی, تو دوسرا کہیں گے کہ مطلب ایسے ایسے بن جاتے ہیں یہ سب بھنگ. یہ بنا لو اچھی طرح سے, ابھی اوپن پڑھیں گے اس میں لکھے ہیں سب. تو یہ ایک سو سینتالیس پرکار سے ہم نے کرم چیتنا کی کو نچایا. کیا نچایا؟ کہ یہ میں نہیں ہوں, میں نے من سے نہیں کیا, میں نے وچن سے نہیں کیا. اگر میں نے من سے کیا ہو, وچن سے کیا ہو, ایسا انچاس بنائے نا. اب کہتے ہیں کہ انچاس کا کرو پرتکرمن, میں نے بھوت کال کی نگت کے لیے ہوں تو, اور انچاس کی کرو برتمان کی آلوچنا, اور انچاس بار کرو پرتیاکشن. تو ایک سو سینتالیس ہو گئے. تو ایک سو سینتالیس رہے گئے نا, اور کرم کا پھل ایک سو اڑتالیس کرم کی پرکتیاں ہیں. تو یہ کہہ دیں گے مجھے اس کرم کا پھل نہیں چاہیے, مجھے اس کرم کا پھل نہیں چاہیے, مجھے اس کرم کا پھل نہیں چاہیے. یہ بدھان ایسے ہی تو بن گئے. وہ ایک کرم دہن بدھان ہوتا ہے نا, پہلے کرم دھیان کرم دھیان بولتے تھے. تو کرم دہن تو وہ کہتا ہے میں فلانا کرم کو جلاتا ہوں, میں فلانا کرم کو جلاتا ہوں. تو آپ ایک ہی جھٹکے میں کہتے ہو ایک سو اڑتالیس پرکاری کرم کو جلاتا ہوں, جھگڑا ختم ہے نا. کیوں انجن چور جیسے کام تو نا, ایک سو آٹھ ایک ہی دفعہ, ایک دفعہ نو کارمن سے بولو ایک ڈوری کاٹو. کیوں ایسا کہتا ہے میں تو ایک ساتھ جھٹکے میں سب کے سب کاٹ دو. ایک بول تو بس ودھان, ایک ارگ میں ودھان ہو گیا پورا. تم ایک ایک کرم کا گنا گنا کر, اور تم نے کہا کہ میں اس کرم کو جلاتا ہوں, اس کرم کو جلاتا ہوں, اس کرم کو جلاتا ہوں, سمجھے نا. تو ایک سو اڑتالیس بار بولا, پھر بھی ایک سو چھپن ہو جاتے ہیں. کیسے ہو جائیں گے؟ اکیلے ایک دفعہ گیانا بنی کرم کا بولو, اور پھر گیانا بنی کی پانچ پھر کتنی, دسنا بنی کا بولو, دسنا بنی کی نو پھر کتنیاں. تو ایک سو اڑتالیس پھر کتنیاں ہو جائیں گی, اور آٹھ کرم ہو جائیں گے. ایک سو چھپن رکھو گے بس بنیا بناتے جاؤ. اب کیا لکھنا ہے؟ پھر فلانے کرم کو جلاتا ہوں, فلانے کرم کو جلاتا ہوں. اب تو ہم نے کہا, ہم نے ان چور جیسا ایک جھٹکے میں کاٹ دیا کہ سب کرم نہیں چاہیے, ہمیں نشکرم بھاو چاہیے. آپ سمجھے نا, نشکرم بھاو چاہیے ہم کو, نہیں چاہیے کوئی کرم پسند نہیں ہے. تو ہمارا اچھا کہ تمہارا, کہ تم نے ان میں ایک ایک گنایا, جس میں یہ بھی بولا تھا کہ میں تیرتھنکر نامک نام کرم سے نشکرم ہوتا ہوں. بولا تھا نا کہ اس تیرتھنکر پرکتی دہنا یا ارگم بولا تھا تم نے, ہے نا. تو بھی تیرتھنکر پرکتی تیاگنے لائق ہے, یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تھا. اور ہم نے ایک سو اڑتالیس میں سبھی کہا, اور ہماری سمجھ میں وہ سب آ گئی کہ صبح صبح. تو ہمارا ودھان سفل ہو گیا, تمہارا رہ گیا بس ختم. ایسے بنے ایسا بدھان. دیکھو تین چار طرح کی بدھان ہیں بس, اور ان کے بننے کی تو ترکیب ہے. جیسے اب یہ کرم دھن بنا, پھر وہ مان لو بنے گی کون بنے, کہ ڈھائی دیپ بدھان. تو ڈھائی دیپ بن جتنے ایکدم تیتالے ہیں, تو ان کو چڑھا بھی جاؤ سمیت پروت کی اس دشا میں, اس دشا میں, اس دشا میں, نیچے اوپر, پھلانے پھلانے, ایک ایک گناتے جاؤ تو بے ہو گئے. دوسرا بناؤ ڈھائی تیرا دیپ بدھان. تو ڈھائی دیپ کے بعد جو اکیتم تک تل ہیں بے اور جوڑ دو اسی میں, تو تیرا دیپ کا ہو جائے گا. کیوں؟ پھر تین لوک منڈل بدھان. یہ کیا ہے پرمنڈل؟ یہ جو اردو لوک میں بھی ہے اور نرک میں بھی ہے, نیچے بھون واسیوں کے جو بھون ہیں نا, ان میں بھی مندر ہیں اکیتم تک تل ہے, تو ان کو جوڑ دو تو تین لوک بدھان ہو جائے گا. پھر اس میں کیا ہے؟ اب تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں ہے. اب تم نے تین لوگ منڈل ودھان کیا, دس بیس دن خراب کرے ہو رہا نا, سارتھک کرے. پر ہم نے یہ کہہ دیا جتنے کتنے موقع تم سے چالا ہیں ان سب کو ارحم نرمام دی سوہا. تمہارے سے بڑا ودھان ہو گیا. کیسے بڑا ہو گیا بتاؤ بھائی, تم بتاؤ گے رمیش؟ بولو بڑا کیسے ہو گیا کہ تم نے تو اکیرتم چیتالیوں کی پوجا کری ہے, ہم نے تو کرتم اور اکیرتم دونوں کی کری نا, لکھے نا کرتیا کرتم چارو چت نلیان. سمجھ رہے کیا کیا ہے, کیا ہے یہ ایک کرتم اور اکرتم, جو اکیرتم چیتالا ہے وہ, اور جو ہم نے یہ بنائے ٹوڑا میں نے سمارا کہ میں بنایا یہاں بنایا وہاں بنایا یہ سب, اور جو چارو مانے سندر چیتالا مانے چیت مانے دن مورتی ان کے بھون, کرتا کرتم چارو چیت نلیان. یہ پڑھا تم نے کتنی دفعہ پڑھا, یہ ارتھ سوچا کبھی نہیں سوچتا, ہم کیا کریں نہیں سوچتے تو ایسا تو ہے نہیں, وہ بہت بڑی بات تھی جو ہم نے کہیں بڑی گدب نکال دی ہے. ابھید سے بھید سے تو اسے بھی سامنے ایک ہوتا ہے, یہ جھٹکے میں بھی ہوتی ہے اور ان کو کئی حصوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں. سمجھ میں آئے نا, یہ کوئی بات نہیں ہے میرے, ہم کہتے ہیں روز ہی نہیں ہمیں پوجا کر لیتے ہیں. آپ نے جنمانی وغیرہ میں چھپی ہوئی دیکھی ہوگی کہ یہ پانچ طرح کی پوجا بتائی ہے وہاں, کہ نتما ہے آستانک یہ ہے نا, اور پھر یہ کلپدرم اندردھوج ایک اور ہے آستانک جیسا ہے نا, تو ایک جو روزانہ پوجن کی جاتی ہے اشتانکا میں کی جاتی وہ دوسری, تو تیسری ہو گئی کہ جو جہاں جہاں تچالا ہیں ان کو دھجا چڑھا کر کے ان کی جاتی ہے. سمجھ رہے نا, تو وہ تیرہ دی مندر ودھان ہے بس اور کچھ نہیں ہے. تو وہ ہو گیا چکربر کی جو پوجن کرتا ہے تو وہ کلپدرم پوجا ہوگی, کمکشک دان دے کر جس کو جو چاہیے ہو بولو ہم دان دیں گے, وہ کلپدرم ہوگی. سمجھے, تو اس میں اندر دھج میں اندر بنیں گے, کلپدرم میں چکرورتی بنیں گے. کیا اب اصلیت میں جو نت پوجن ہے اس میں کیا لکھا رہتا ہے, نت نیم پوجن لکھا رہتا ہے. کبھی سوچا یہ کیا ہے, ہزاروں بار دیکھا ہوگا نا کہ نت نیم پوجن, کہ جو پوجن روزانہ نت مانے روزانہ, وہ نیم مانے نیم سے کی جائے کی جانی چاہیے. کبھی روزانہ اتنی تو کرو ہی کرو اور کچھ کرو کہ نہیں کرو, کبھی وچار کیا کسی نے وچار کیا ہو تو بتاؤ کہ نت نیم پوجن کا مطلب کیا ہے. ابھی ہم بولیں اب نت نیم پوجن شروع کرو تو فٹافٹ سب کھول لو گے کرنا شروع کر دو گے, لیکن نت نیم مانے کیا یہ نہیں سوچا. اب سیدھا سا چار تھے نا کہ نیم سے نت کرنے یوگ, ٹھیک ہے نا. اب نت نیم پوجن میں کیا ہے نت کے, تو سب سے پہلے دیو ساس گرو پوجن یہ لکھی نا کیوں. اب وہ کہتے ہیں کہ جگت میں جتنے بھی پوجن کرنے یوگ ہیں وہ سب اس میں آ گئے, دیو میں ارہم سدھ آ گئے, گرو میں آچار اپادھیائے سادھو آ گئے, تو پنج پرمیشٹری آ گئے ہیں, اور ساتھ میں جنمانی آ گئی, بس ختم. بولو کیا ہے پوجن ہے, جگت میں کچھ بچا ہی نہیں. آپ نے ایک دیو ساس گرو پوجن کی تو اس میں سب آ گیا, بس نت نیم پوجن ہو گئی. ایسا نہیں کہ ہم نے کچھ چھوڑ دیا ہے, ہم نے سنکھیپ میں ساری پوجنیں کر لی. اب دھیرے دھیرے ہمارے دماغ میں کیڑا الجھا, سدھ پوجن تو رہے گی, اب اسی سمجھ میں نہیں آئی کہ دیو ساس گرو میں سدھ آئے کہ نہیں آئے. تو ایک سدھ, اب دھیرے دھیرے وہ نت نیم پوجن میں سدھ پوجا جوڑ گئی. اب سمجھے نا, تو دو پوجنیں انمار ہو گئی. اب ارے ورتمان بیس تیس انکر تو رہ ہی گئے, تو چلو یہ بھی جوڑ دو, ایک بیس تیس انکر کی پوجن الگ اور جوڑ دو. ارے بھائی ارہن تھے نا سب, تو دیو ساس گرو میں ارہن تو میں دیو نہیں ہے رے, آ گئے نا, اب ہم نے وہ بھی جوڑ دیے. پھر ہم نے ان کی مورتی کے نام پر اکیرتم چیتالیہ کے पूजन नहीं कर सकते हैं तो अर्घ जोड़ लिए, आप समझिए ना, ऐसे कर करके हमने और उसको इतनी लंबी बना दी कि अब एक घंटे आधा घंटे की पूजन थी वो दो तीन घंटे की हो गई। फिर हर एक गांव वाले ने जोड़ी कि हमारे यहां श्री मंदिर जी विराजमान है तो श्री मंदिर की चाहिए, एक जुगमंदिर विराजमान है तो जुगमंदिर की चाहिए, एक पार्श्वनाथ विराजमान है तो पार्श्वनाथ के चाहिए, नहीं तो अर्घ तो करते नहीं, नहीं, नहीं। अब इतना तो करो बेचारों को, पूजा नहीं करे तो अर्घ ही दे दो, क्यों तो जितनी मूर्तियां हो गई हैं उत्ते भगवान उत्ते अर्घ उसमें बे जुड़ गए, लेकिन वे सब आ गए ना उसमें कृत्या कृत्यम चैत्यालय में, अपने कृत्या कृत्यम चैत्यालय को अर्घ चढ़ाया तो वे सब आ गए ना, ऐसे हमने जोड़ जोड़ करके और वे फिर उसके लंबाते गए। अब देखिए अज्ञान की सीमा का हद बताता हूं मैं। हमारे एक मित्र थे, मेरी इस उम्र में बड़े थे, ब्रह्मचारी थे, उनका नाम सच्चिदानंद था, नाम तो सरदार मल जी था, वे सर्वानंद सच्चिदानंद लिखते थे। तो जब युगल जी ने पूजन बनाई, हमने पूजन बनाई, ये सब पूजन बनाई हम लोगों ने, तो उनको भी आया शौक, उसके बाद उनने बनाई, हमारे सामने बनाई, हमारे सामने बनाई, तो उन्होंने क्या किया कि उस पूजन में ऐसी अथरी बनाई ना कि देव सास गुरु को दिखाऊं और क्या सिद्ध गुरु के गुण गाऊं, क्या है विद्यमान श्री भीष्टी शंकर और सिद्ध गुरु के गुण गाऊं, तो अब उनमें उस अचरी में तीन चीजें जोड़ दी, यद्यपि वे जुड़ी थी, विद्यमान बीस तीर्थंकर भी अहंत में थे और सिद्ध भी सिद्ध में थे, लेकिन वो हमारे दिमाग में ये लग गया था ना सिद्ध चाहिए ये चाहिए, तो उन्होंने हम भी घबराते थे इतना समय हमारे पास नहीं है, तो उनमें अचरी में इतना लिख दिया तो वो सब कर लेते, वो आता ना वन थ्री थ्री इन वन, ये पूजन थ्री इन वन है, अरे भले आदमी सब पूजने थ्री इन वन है, वो पुरानी देवसाज गुरु की भी थ्री इन वन ही है, और सब ने छोड़ के वो शुरू कर दी, कुछ नहीं बस सिर्फ इतनी सी बात है उसमें, आप सुनिए ना, नाम देवसास गुरु पूज नहीं रखा और सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं इतनी सी अचरी के लिए। अब उन पूजन के छंद में वो भी बहुत अच्छे आध्यात्मिक बनाए हैं, लेकिन तो अभी युगल जी की पूजन से और दूसरी पूजनों से तुलना करो तो वे कहीं खड़े नहीं होते हैं, जयमाला में जो इतनी लंबी लंबातें कही है वो कुछ नहीं, छोटी सी जयमाला तो लोगों को पसंद है क्योंकि आधा समय लगता है और तीन पूजन एक साथ हो जाती है काम ने बढ़ जाता है, तो ये चलने के लिए हमसे हम हंसते थे, हमारे सामने मजाक उड़ाते थे, गए ना बैठे रह गए क्या, चली बन चली, फिर लोगों के दिमाग में आया कैसा पंच परमेश पूजन तो करी नहीं, अरे देव साध गुरु ये पंच परमेश पूजन ही है, तो पवैया जी ने पंच परमेश के नाम से बना दी, तो फिर वो धराधर चलने के लिए क्या, मेरा मतलब यह है कि ये सब ज्ञान की नहीं अज्ञान की महिमा है, यानी मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने एक पूजन यदि करी है तो भी हमने कुछ नहीं छोड़ा, जिनकी पूजन करना चाहिए थी वो सब पूज्यों को पूजन हो गई, अब वो अलग बात है कि कभी विस्तार से करते हैं कभी संक्षेप में करते हैं, कभी हम ऐसा कह सकते हैं कि 148 प्रकृतियां गिना गिना करके ये त्याग नहीं हो गए, 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 कभी हम आठ में गिना करते ग्यारह बन त्याग दस ना बन त्याग ऐसे कह रहे थे, कभी कर्म कर सकते हैं जी, कर्म संन्यास आ गया जी, ये कर्म 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 फल त्याग बस खत्म हो गया, अब कर्म के फल में चारों गतियां हैं, हम चारों गतियों का त्याग करते हैं तो देव गति का भी त्याग हो गया, मनुष्य गति का भी त्याग हो गया, हमें कोई कैसा कहां जाना है जहां जाना हो वैसा कर्म करो, अरे इस संसार में हमें रहना ही नहीं है, ये तुम्हारे जो कर्म करने से जहां जहां जाते हैं वहां हमें रहना ही नहीं है, हमें तो अपने में जाना है कि मोक्ष में जाना है समझ लो आप, क्यों तो हम क्यों करें, तो ये उस निष्कर्म भाव की बात है कि तुम निष्कर्म भाव को अपनाओ, کیا کہ ٹھیک ہے کل سے ہم لوگوں کو یہ سمجھائیں گے کہ نہیں کرنا نہیں کرنا سر. لیکن تم سمجھ کے شانت نہیں رہ سکتے ہو, تم سمجھ کے شانت نہیں رہ سکتے ہو. میں نے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وویک سے اس بات کو ہمارے دماغ میں نہیں آتی. تو یہ کلپنا کرو کہ پہلے جو دیوساز گرو پوجن تھی, بیگل جی کو یہ وکلپ آیا کہ بھائی اس میں تو دیویوں کی مہیما زیادہ ہے, بھگوان کی تو کم ہے. تو انہوں نے ایک بھگوان کی مہیما والی بنائی. تو وہ تو ان کی ایک آوشیکتا سے بنائی نا کہ یہ چیز ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہے اس میں. پھر اسی کی لین پہ دس نے ٹھوک دی. انہیں کچھ پتا نہیں ہے, بس انہوں نے لکھا کہ پل پل پر پتگل کا بھکشن کر کے یہ بھوک مٹانا چاہی تھی. تو انہوں نے شبدوں میں بدلا بدلی کر کے اور پھر بھی بھوک مٹانے کے لیے پتگل کھانے کو پھر جی پھر بالکل ویسی کی ویسی دو شبدوں کی ہاں وہاں پھیر پھار کر کے اور کھڑی کر دی. میرے کہنے کا آشا یہ ہے کہ اس نشکرم بھاو کو ابھی آپ سمجھ لیں تو روزینہ دو منٹ میں پرتیاخیان ہو سکتا ہے. اب ہم کو بتا کے کیا کرنا سمجھ گا, ہم منی ہو گئے سادھو ہو گئے, ہم سب گرست بیٹھ گئے, ہمیں آٹھ گھنٹہ اس میں لگانا ہے تو پھر ہم ڈیٹیل سے ہی کریں گے نا. ہم کائے کو کنجوسی کریں گے کہ سب کو ایک ساتھ نپٹا دیں, پھر ہم وہ کریں گے. یار دیکھو ابھی پڑھتا ہوں میں جو میں نے آپ کو پولا جو ہے وہ سب لگ بھگ لکھا ہے اس میں. دوسرا آگے کا 48 پیج نکالو. تینوں کالوں کے دشکرتوں کے تیاگ کی بھاونا من وچن کائے اور کرت کارت انمودنا پوروک کی جاتی ہے. اب یہ دشکرت لکھا نا, اب دشکرت مانے کیا ہے یار, پاپ کر دیا لوگوں نے, پھر چھٹی کر دی اس کی پٹاپٹ. ارے بھائی یہ سب دشکرت ہی ہیں جو کرنے یوگیہ نہیں ہیں, جن کے تیاگ کی بھاونا کو نچانے کی بات کہہ رہے ہیں وہ سب دشکرت ہی ہیں. اب ہم نے جہاں جہاں تھا جہاں دونوں کی پنیہ اور پاپ دونوں کے ارتھ میں جو شبدوں کا پریوگ کیا تھا آچاریوں نے, ہم نے ان سب کا ارتھ پاپ کر دیا اور پنیہ کو بچا لیا. اب دیکھیے یہ دشکرت شبد ایسے ہی ایک اگ شبد ہے. اگ مانے کیا ہوتا بولو, پاپ ہی ہوتا نا. ہم گھور اگ کینے بچتے نہیں جات کہیں نہیں آتے. اب اگ مانے پنیہ اور پاپ دونوں ہوتا ہے. اب وہی صحیح ارتھ ہے, وتپتی ارتھ ہے, لیکن بس ہم نے اس کو پنیہ پنیہ نکال دیا, اکیلا پاپ لے لیا. اس میں کیسے ہوتا ہے, میں نے کئی دفعے بتایا ہے کہ کا مانے ہوتا ہے پرتھوی, کھا مانے ہوتا ہے آکاش, گا مانے ہوتا ہے دیوی دھونی بانی, اور گھا مانے ہوتا ہے آتما. یہ جو بنجن شروع ہوئے نا تو انہوں نے جو مہتوپورن چیزیں ہیں نا آکاش پرتھوی آتما, ان کو انہوں نے ایک ایک اکشری شبدوں میں نیوکت کر دیا. کم سے کم شبدوں کا پریوگ کرنا پڑے اور ہم کو ان کا بار بار پریوگ کرنا ہے. کائے کو آتما کا کرنا ہے, آکاش کی بات کرنی ہے, تو ایک اکشری شبد میں بنا دیا. اب انہوں نے کہا جیسے کھا ہے نا تو کھا گئے لگا دیا, کھے گچھتی تھی کھگا, جو آکاش میں چلے انہیں کھگ مانے پکچھی. تو ادھر کھا گا کھگ بنا کر کے پکچھی ہو گیا اس کا ارتھ. کومدی ہے نا, لکشمان کومدی پڑھتے ہو بنے سمیک کومدی پڑھتے سننا نام. یہ کیا ہے کومدی, کیا ہے کا مانے پرتھوی, ساری پرتھوی کو پرسنتا دینے والی کومدی, چاندنی کو بولتے ہیں, چندرما کی چاندنی سب کو خوش کر دیتی ہے, سمجھے نا. تو ایسے گھا مانے آتما, اور اگھ مانے جہاں آتما کی آرادھنا نہیں ہے وہ سب اگھ ہے. گھا مانے آتما نہیں ہے, اب چاہے تم پنیہ کرو اور چاہے پاپ کرو, دوسروں کا چاہے بھلا کرو چاہے برا کرو, اپنا تم نے کچھ نہیں کیا. چلو دوسروں کا تو کیا, अरे एक तरफ दूसरे का कर ही नहीं सकता है, जो जो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है वो किया तुमने। वो क्या कहता किया, समझाने के लिए कहा था ना कि आप अपना कुछ नहीं किया, आज तक जो कुछ किया पर का ही किया। अरे पर के करने का तुमने विकल्प किया, किया कुछ नहीं है। तो ऐसे इन शब्दों का जब तक हम गहराई से मर्म नहीं समझेंगे तो अध्यात्म की बड़ी से बड़ी बात आएगी हमारे सामने तो भी हम उसको कुछ समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें बहुत गंभीरता से इसको पढ़ना चाहिए। अभी जो मैंने आपको तरकीब बताई है ना, एक दफे ऐसा करना कि तुम इनको आगे सब पढ़ के आना, कम से कम 8-10-20 पेज, तो मेरी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी। मैं ज्यादा समय इसमें लगाना नहीं चाहता हूं और आगे बढ़ना चाहता हूं। अब ये सब इस 7 गाथाओं का मामला चल रहा है, समझ में आई ना, अभी बहुत विस्तार से आने वाला है इसमें, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ये सब देखो ऐसा है ना, ये सारे पेज पढ़ के आना है तुम्हें, मैं यही समझा रहा हूं। ये सब बोल रहा हूं ना, देखो ये सब, ये जितने भी मंत्र लिखे हैं ना, ये 1 सेकंड में तुम्हें याद हो सकते हैं, मुझे हो गए समझ में, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाना, समझ गए ना, ये लिखे ये पढ़ने के लिए सपना, बाकी आप कल करेंगे।